ఓం శాంతి. జనవరి మాస మే సభీ నే బహుత్ అచ్చి తపస్యా కీ. చారో తరఫ్ దేశ విదేశ మే యోగ భట్టీ కే కార్యక్రమ చల్తే రహే హై. యే వర్దానీ మాస బ్రహ్మా బాబా కీ స్మృతియో కా మాస, హమ్ సబ్ బాబా కీ విశేషతాయో కో సునతే, బాబా కే సమాన బాబా కే కదమ్ పర్ కదమ్ రఖకర్ ఆగే చల్నే కా పురుషార్థ కర్తే హై. ఆజ్ హమ్ ఆప్కో అవ్యక్త పాలనా కీ కుచ్ విశేష బాతే సునాఊంగా, క్యోంకి హమ్ భీ అవ్యక్త పాలనా మే హీ ఆయే, ఔర్ యహాన్ జో భీ బైఠే హై సబ్ అవ్యక్త పాలనా వాలే హై. కోయి హై సాకార వాలా? ఏక్ డాక్టర్ సాహబ్ హై, ఔర్ కోయి హై? వైసే తో साकार के समय मेरा लौकिक में जन्म हुआ और बाबा की पत्रों से मेरी पालना हुई, लेकिन सन्मुख आने का चांस मुझे नहीं मिला. मेरे लौकिक पिताजी माताजी सभी हर साल बाबा से मिलने आते थे, लेकिन मैं लौकिक पढ़ाई के कारण और कुछ लौकिक बंधनों के कारण नहीं आया. जब बाबा अव्यक्त हुए, 5-6 दिन के बाद मेरे लौकिक घर में पत्र मिला कि बाबा ने शरीर छोड़ा है. यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एक छोटे से गांव में जन्म हुआ. 1960 में स्वयं मातेश्वरी ने, मम्मा ने हमारे घर पर गीता पाठशाला खोली थी. उस समय 35 दादियां उस गांव में गई थीं, एक बस भर करके, और गांव बहुत अंदर, छोटा सा गांव जहां कोई और साधन नहीं, ये बिजली भी नहीं, अभी भी नहीं. दादियों को, मम्मा को बैलगाड़ी पर गांव के अंदर घुमाया था. उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे वो दृश्य याद नहीं है. 4 साल का था मैं, लेकिन पूरा परिवार ज्ञान में था. घर में गीता पाठशाला थी, फिर भी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया. लौकिक पढ़ाई करता था, और जब क्लास पूरा हो जाता था तब सो करके उठता था. मुरली क्लास कभी नहीं किया घर पर. लेकिन जब बाबा के पास मधुबन में आए 1971 में, 71 में पहली बार बाबा को अव्यक्त हुए, 1.5 वर्ष हुए थे. 1.5-2 वर्ष हो चुके थे. तो जब मैं पहली बार पहुंचा तो बाबा का बहुत न्यारा प्यारा पाठ चलता रहता था, क्योंकि जब भी कोई आवश्यकता होती थी, कोई भी डायरेक्शन लेना होता था, तो बाबा को कहीं पर भी बुला लेते थे. भोग रखने की भी जरूरत नहीं होती थी. ऑफिशियल जब बाबा क्लास के बीच में आते थे तो भोग रखा जाता था सामने, लेकिन अगर कोई आवश्यकता है, कोई संदेश पूछना है, कोई बाबा से पर्सनल बात करनी है, तो दीदी और दादी और यशु दादी लिखती थी और दीदी दादी बाबा से प्रश्न करती थी, डायलॉग करती थी, पूछती थी। गुलजार दादी को बिठाया, बाबा के पास गई और बाबा आ गए। तो बाबा के कमरे में आप लोग गए हैं, देखा है बाबा की गद्दी। उस गद्दी पर बाबा बहुत बार आते थे। और जो छोटा हाल हिस्ट्री हाल है उसमें भी सामने गद्दियां पड़ी हैं, लेकिन साइड में बाबा की गद्दी बना देते थे नीचे ही, क्योंकि सोफा नहीं थे, कुर्सियां नहीं थी, पट्टी था सारा। तो छोटे से स्थान में और बहुत छोटा सा परिवार था। जब मैं आया हूँ उस समय मधुबन निवासी केवल मैं समझता हूँ 40 या 50 के लगभग थे। उसमें अधिकतर बूढ़ी बूढ़ी माताएं थीं जो सेंटर्स पर नहीं रह सकती, कुछ भाई थे, और सब काम घर के जितने काम थे कोई भी मजदूर घर में नहीं रहते थे। हर वर्ष कोई एक बिल्डिंग नई बनती थी। इंद्रप्रस्थ मेरे सामने बन रहा था, ट्रेनिंग सेंटर का ऊपर का स्थान बाद में बना, विशाल भवन, भंडारा, ओम शांति भवन, ये तो सब बाद में बने हैं। लेकिन बहुत छोटे से स्थान में और बाबा की हर प्रकार के गाइडेंस में यज्ञ चलता रहा। कैसे बाबा के आने की शुरुआत हुई, पहले वो कहानी शायद सुनी हो आप लोगों ने, मैं फिर भी सार में सुनाता हूँ। बाबा ने 18 जनवरी को शाम को मुरली सुनाने के बाद 8:30 बजे बाबा मुरली सुनाने के लिए क्लास में आए। सभी बच्चों से आधा घंटा मिले, मुरली सुनाई, लास्ट मुरली। और मुरली सुनाने के बाद जब छोटे हाल में गेट पर बाबा आते थे तो वहां पर नमस्ते करते थे। ये जो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, वो गेट पर बाबा आके करते थे। तो उस दिन बाबा ने खड़े होकर के बच्चों को नमस्ते के साथ साथ कहा, बच्चे आज विदाई, पहला शब्द यूज किया विदाई, और उसमें ही ये तीन शब्द उच्चारण किए, नम्रचित, निरहंकारी निर्माण और निर्विकारी बन करके रहना। उसके बाद दादी जी बाबा के साथ हाथ पकड़ करके कमरे तक आई, क्योंकि सुबह से बाबा को थोड़ा सा ठंडी का, बहुत ठंडी थी 18 जनवरी की, तो ऐसे लगता था आज बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली है। लेकिन सारा दिन बाबा ने काम किया, सेवाएं की, और दादी जी को रोका था, इसलिए दादी को सब कार्य दिखाए यज्ञ के अंदर क्या क्या चल रहा है। जहां जहां मकान बन रहे थे बाबा अपने हाथ से दादी जी को साथ में लेकर के गए और बताया, यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, ये मुख्य मिस्त्री हैं, ये मजदूर हैं। और उसके बाद भंडारा सारा दिखाया, क्या क्या भंडारे में रखा है, कितना स्टॉक है। दादी समझ नहीं पा रही थी सब बाबा मुझे क्यों दिखा रहा है, लेकिन बाबा बहुत प्यार से एक एक स्थान पर दादी जी को लेके गया, दादी प्रकाशमणि जी को। और सब स्थान दिखाने के बाद बाबा ऑफिस में आए, और ऑफिस में यशु दादी थी, उनको बोला कि जितने भी बच्चों के पत्र आए हैं बाबा सभी बच्चों का पत्रों का जवाब भी देगा। तो जितने भी पत्र थे बाबा ने सब पत्र पढ़े, उत्तर दिए, और उत्तर देने के बाद शाम को कहा, आज बच्चे ठंडी ज्यादा है इसलिए जल्दी क्लास करना है, सब बच्चों को बुलाओ। उसे नाइट क्लास 9 बजे होता था, लेकिन उस दिन 8:30 बजे सबको बुला लिया, सब 8 बजे। और फिर बाबा ने आधा घंटा बहुत अच्छी मुरली सुनाई, और मुरली सुनाने के बाद जब कमरे में गए तो दादी जी को हाथ में हाथ दिया दृष्टि देते देते और बाबा ऊपर उड़ गया वतन में। दादी को पता नहीं चला क्या हुआ है, दादी ने समझा कि बाबा को थकावट फील हो रही है, इसलिए दादी ने बहुत प्यार से बाबा को लिटा दिया। और डॉक्टर को बुलाने के लिए भाई को बोला, एक भाई को बाहर से बुलाया कि जाओ तुम डॉक्टर बुला के ले आओ, कुछ बाबा को तकलीफ महसूस हो रही है। तो उस समय डॉक्टर बाजार में थे, अपने तो घर में नहीं थे कोई डॉक्टर, एक सिंधी डॉक्टर था जो बाबा का फैमिली डॉक्टर था, तो दानी नाम था, अभी भी है। तो भाई लोग साइकिल लेके आए, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी उस समय कोई, साइकिल पर गए और डॉक्टर को बुला करके लाए। तो जब डॉक्टर आके देखा तो बोला कि बाबा तो शरीर छोड़ दिया है, नहीं है। तो दादी ने कहा ऐसा कैसे होगा, आप देखो अच्छी तरह से। बोला क्या देखूं, है ही नहीं बाबा, तो शरीर छूट गया है। तो उसके बाद फिर दादी ने सबको फोन किए रात भर जग करके, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, रात भर बैठ कर फोन लगाती रही। जहां जहां भी दादियां थी, बहनें थी, पूरे भारत के अंदर, विश्व विदेश में तो कोई नहीं था, तो सबको रात भर में इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे है कि बाबा यहीं है, लेकिन बाबा ने शरीर छोड़ा है, आप आ जाओ। तो कोई माने ही नहीं बाबा दादी की बात, कि दादी ये क्या कहती है, बाबा कैसे जाएगा, ऐसे बाबा कैसे शरीर छोड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन सबने सुना दादी कह रही है, दादी की आवाज है, तो सब दौड़ दौड़ करके दो दिन में आ गए, बहुत लोग आ गए। और 19 और 20 तारीख सब आते रहे, बाबा की बॉडी को सजा के तैयार करके छोटे हाल में रखा गया था। और उसके बाद संदेशियां, जब गुलजार दादी पहुंची और दूसरी दादियां पहुंची, तो दादी ने कहा कि जाओ बाबा से पूछो क्या हुआ है, क्यों बाबा चला गया, क्या हुआ, अब क्या करना है। तो जब संदेशी ऊपर जाती थी तो ऊपर कोई मिलता ही नहीं था वतन में, और एक ही शब्द लिखा होता था। गुलजार दादी को शब्द पढ़ने में आया ड्रामा। तो ये कौन सा ड्रामा है, ये कौन सी बात है, ये भी पता नहीं चलती थी। फिर बाद में बाबा ने धीरे धीरे सब संस्कार कैसे करो, क्या करो, सब डायरेक्शन बाबा से लिए, छुट्टी ली, क्योंकि पांडव भवन के अंदर करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की छुट्टी चाहिए। तो वो सब जगदीश भाई और बड़े भाई सब मिल करके छुट्टी लिया। फिर बाबा के शरीर को सजा करके गाड़ी में पूरे आबू में परिक्रमा दिया, चक्कर करवाया। और फिर उसके बाद 21 तारीख को दोपहर के बाद संस्कार हुआ। और संस्कार के बाद सब स्नान पानी करके भोग लगाने के लिए हाल में बैठे थे, छोटे हाल में ही वही हाल था। तो जब दादी 21 जनवरी को पहली बार बाबा के पास गई भोग लेकर के, तो बहुत देर तक ऊपर से वापस नहीं आई। तो सब देखते रहे क्या बात है, दादी इतनी देर ऊपर कभी नहीं लगाती भोग में। तो फिर बाबा की प्रवेशता हुई पहली बार 21 जनवरी 1969। और बाबा ने जो भी सबके मन में प्रश्न थे, आप जानते हो कि अचानक कोई जाता है तो उसके बाद बहुत सारे प्रश्न हिलते हैं, और बाबा चला गया तो पहला प्रश्न ये था कि अब मुरली कैसे चलेगी, कौन देखे, किससे मिलने मधुबन में लोग आएंगे, सेवाएं कैसे चलेंगी, कैसे विस्तार होगा। तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के थे। तो बाबा ने फिर शाम के समय गुलजार दादी के तन में प्रवेश किया और सारे डायरेक्शंस दादी की आवाज में ही दिए, अव्यक्त आवाज नहीं थी उस समय। टोटल पूरी मुरली 1.5-2 घंटा दादी के द्वारा बाबा ने चलाई, सबको पहले खूब दृष्टि दी, उसमें बाबा ने कहा कि बाबा कहीं गया नहीं है, सिर्फ शरीर परिवर्तन किया है, कमरा रूम चेंज किया है, बच्चों के साथ ही है और बच्चों के साथ ही जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक बच्चों के साथ ही रहेगा, वायदा भी किया। और दीदी और दादी इन दोनों के ऊपर एक कलश रखा और कहा कि ये दोनों को बाबा की तरफ से निमित्त रख रहे हैं, अभी ये दीदी और दादी दोनों मिल करके सबकी पालना देंगी साकार में। और क्योंकि दीदी उस समय बाबा के साथ ही रहती थी, 65 जब मम्मा व्यक्त हुई तो दीदी मनमोहिनी, शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो दीदी मनमोहिनी दिल्ली में सेवाएं संभालती थी और दादी बॉम्बे में सेवाएं संभालती थी। बॉम्बे गाम देवी सेंटर पर दीदी दादी रहती थी और दीदी मनमोहिनी कमला नगर करोल बाग में सेंटर खुला था वहां रहती थी दिल्ली के अंदर। तो दीदी को बाबा ने 65 में अपने साथ बुला लिया था मम्मा के अव्यक्त होने के बाद, और दादी को उस दिन बुलाया जब बाबा को अव्यक्त होना था। 3 दिन पहले दादी पार्टी लेके आई थी तो बाबा ने कहा बच्चे पार्टी को भेज दो, तुम रुक जाओ। दादी को नहीं पता था बाबा क्यों रोक रहा है, लेकिन पार्टी चली गई और दादी रह गई। दादी को बाबा ने दीदी और दादी को निमित्त बना करके फिर 21 तारीख को सब डायरेक्शन दे दिए कि बच्चे जिसको तुम निमित्त बनाओगे उसके द्वारा बाबा मिलता रहेगा। तो निमित्त बन चुकी थी गुलजार दादी, क्योंकि उसके तन में बाबा पहली बार आए थे। वैसे संदेशियां बहुत थी, बाबा की फेवरेट 2 और संदेशी थी। एक थी संतरी दादी, शायद आप लोगों ने सुना हो नाम, संतरी दादी थी बिश्वकिशोर दादा की युगल। बाबा का जो भतीजा था बिश्वकिशोर दादा, उनकी युगल थी संतरी दादी। और बहुत सीधी साधी, बहुत सिंपल थी। बाबा उनको हमेशा संदेश में भेजता था, कोई भी डायरेक्शन लेना होता था साकार में बाबा उनको कहता था जाओ बच्ची वो तन से बाबा से पूछ के आ जाओ। तो संदेशी का पार्ट एक संतरी दादी के द्वारा, और दूसरा शील दादी थी। शील दादी थी दीदी की छोटी बहन लौकिक में, और वो बॉम्बे में ही रहती थी कुलाबा में। तो इन दोनों को बाबा हमेशा बुला करके डायरेक्शन लेना होता था साकार में भी, तो इनको ट्रांस में भेजते थे। और गुलजार दादी तो शुरू से ही लेकर के बाबा के जितने ज्ञान के रहस्य हैं, जितना हम सबके पास ज्ञान है, चित्रों में आप लोगों ने देखा है 3 लोकों का ज्ञान है, 3 कालों का ज्ञान है, परमात्मा का, आत्मा का, जो भी ज्ञान स्पष्ट हुआ है वो गुलजार दादी के ट्रांस मैसेज के द्वारा वो जाके देखती थी, ये सूक्ष्म वतन है, ये मूल वतन है, ये साकार वतन है, और फिर बाबा को सुनाती थी तो बाबा साकार में उसको वेरीफाई करते। तो ऐसे करके 3 संदेशियां बाबा की थी, और दादी तीनों को बिठा करके भेज देती थी, ऊपर जाओ बाबा से पूछो क्या करना है। लेकिन लास्ट दिन 21 तारीख को बाबा गुलजार दादी के तन द्वारा इतना डायरेक्शन दिया, और उसके बाद जब भी जरूरत होती हर दूसरे दिन तीसरे दिन बाबा को बुला लेते थे, बाबा आ जाते थे। दोनों बाप दादा का पार्ट तो दादी के द्वारा शुरू हुआ, और इस 21 तारीख को 45 साल पूरे हुए। आप समझ सकते हैं इतना लंबा पार्ट अव्यक्त बाबा का। और 42 साल तक हमने भी बाबा की डायरेक्ट पालना अव्यक्त बाबा की ली। वो एक क्षण भी मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि ड्रामा अनुसार मुझे दीदी और दादी ने बाबा के महावाक्य लिखने की सेवा दी है। यीशु दादी लिखती थी वैसे, लेकिन दादी ने कहा तुम भी बीच बीच में साथ में बैठो और लिखो। तो मैं जब बाबा आते थे तो मैं बाजू में जाके बैठ जाता था, और सब लिख के ले आता था, क्योंकि मैंने टाइप सीख ली थी और दादी कहती थी तुमने जो बाबा ने बोला वो टाइप करके ले आओ, फिर मुरली बनाओ, कैसे भेजना सेंटर्स पर, तो दादी दीदी हमें सिखाती थी। तो इसलिए 42 साल तक बाबा की, अव्यक्त बाबा की कोई भी मुरली इन्हीं हाथों से लिखी गई है, जितनी मुरलियां आपके पास हैं। और सभी मुरलियों में जो पार्टियों की मुलाकात है, जो अलग अलग पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं, ग्रुप वाइज मिले हैं, वो भी सब मैं रात भर बैठ के लिखता था, क्योंकि बाबा का पार्ट बड़ा वंडरफुल चला। बाबा एक एक बच्चे से पर्सनल मिलता था, मुरली तो आधा पौना घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा चलाई, लेकिन उसके बाद जो बच्चे आते थे सबको बाबा टाइम देता, दृष्टि भी खूब देता था, हाथ मिलाता था, फिर उसकी विशेषताएं सुनाता था, फिर उसको वरदान देता था। तो मैं समझता हूँ एक एक बच्चे को 15 मिनट 20 मिनट, परिवार आ गया तो उसके साथ, अकेला आया तो उसके साथ, एक एक से मिलता था। तो वो धीरे धीरे पाठ इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, तो एक दिन तो बाबा ने करीब 14-15 घंटे पाठ बजाया। शाम को बाबा आए 7 बजे 6:30 बजे और सुबह 8-9 बजे तक। भोग का दिन था और बाबा भोग के दिन कहने लगे अभी भोग हो गया पूरा, गुरुवार ओम शांति भवन जब बन चुका था उसके बाद की बात है। पूरी रात बाबा बच्चों से मिले, तो इतने बाबा वरदान देता था, इतनी मीठी मीठी बातें करता था, वो सब मैं लिखता था, क्योंकि उस समय टेप रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, कंप्यूटर भी नहीं था, तो हम हाथ से ही लिखते थे। उसके बाद टेप मशीन मिले तो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, उसके बाद फिर कंप्यूटर एज आ गई, कंप्यूटर में डायरेक्ट टाइप होने लगी। तो मैंने देखा कि बाबा ने जो पालना दी, एक एक बच्चे को वरदान दिए, वो पाठ कैसे और कब समाप्त हो, परिवर्तन कैसे हुआ, वो सुनाता हूं मैं। 88 में अव्यक्त पाठ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अचानक दादी को बीमारी हुई, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के पहले बाबा को बुलाया गया तो बाबा ने कहा कि हम मधुबन निवासियों से मिलने के लिए आएंगे और सभी से मिलेंगे जितने थे। उस समय तक 120 भाई थे और 50-60 बहनें थीं। बाबा शाम को 7 बजे आए, मुरली चलाई और मधुबन के भाइयों से मिलना शुरू किया। 120 भाई सुबह 7 बजे तक मिले, एक एक को कितना समय बाबा ने दिया होगा। लास्ट में मैं मिलने गया क्योंकि मैं सबका लिख रहा था, टोटल सब के वरदान लिखे और एक पूरी डायरी भर गई इतनी, लिखता गया मैं बैठे बैठे रात भर। 88 में जब 7 बजे आया तो बाबा ने कहा अभी भाइयों का पार्ट मिल लिए, अभी बहनों को दूसरी बार देखेंगे। लेकिन वो दिन नहीं आया फिर से बाबा मिला हो ऐसा, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद दादी को काफी समय रेस्ट भी करनी पड़ी। फिर बाबा ने ग्रुप से मिलना शुरू किया, व्यक्तिगत मिलना पूरा हो गया। ग्रुप में भी जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप आ गया, जर्मनी का ग्रुप आया, लंदन का ग्रुप आया, हांगकांग का ग्रुप आया, तो ऐसे ग्रुप वाइज मिलना शुरू किया। इंडिया से भी जोन वाइज मिलना शुरू किया, महाराष्ट्र है, पंजाब है, यूपी है, ऐसे ग्रुप बन गए। और ग्रुप में अगर 500 लोग हैं तो सबको खड़ा कर देते थे और फिर बाबा 10-15 मिनट मुरली चला देता था और बिठा देता था। उस ग्रुप को पहले आगे बुलाते थे फिर बाबा उनसे बात करता। 88 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया और 88 में जो मधुबन निवासियों से बाबा ने बातें की, जब मैंने टाइप किया तो दादी को, बड़ी दादी को सुनाया कि बाबा ने आज रात भर इतना बोला है, इतने वरदान दिए हैं, क्योंकि दादियां नहीं बैठती थी बाबा के पास। बाबा हमेशा उनको कहते थे कि आप लोग रेस्ट करो, जब बाबा को विदाई देनी होगी तब आ जाना, बाबा सबसे मिलेगा। तो दीदी दादी जाके सो जाते थे और भी मिलाने वाले रहते थे, बाबा से मिलाने वाली बहनें दो होती थी एक दो, और एक बिजली वाले होते थे भाई लोग, एक माइक वाले होते थे और हम लिखने वाले करीब 8-10 लोग जगते थे, और जिनको शौक होता था और भी बैठते होंगे 4-5। बाकी सारी पार्टियों से नंबर देते थे, इसके बाद इसका टर्न है, इसके बाद इसका टर्न है। तो पूरी पूरी रात एक खेल बाबा का अब पार्ट चलता था। तो जब मैंने वरदान इतने सबके लिखे और दादी को टाइप करके बताए, तो दादी ने कहा केवल मधुबन निवासियों के लिए है क्या, दिया तो मधुबन वालों को बाबा ने था। कहती नहीं, तुम ऐसा करो ये वरदान ऐसे ढंग से लिखो जो सब ब्राह्मणों के काम में आ जाए। ये मेरे को सेवा मिली। तो जब मैंने उन वरदानों को सेट किया तो इतने वरदान हो गए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे, तो एक वरदान ने मुरली के नीचे तो 4-6 लाइन लिखना है, तो उनको भाग में बनाना शुरू किया तो 365 से भी अधिक बन गए। और वो मैंने जब सेट किए तो दादी को बोला, दादी इतने वरदान बन गए बाबा के। दादी ने कहा अभी तुम इसको मुरली के नीचे शुरू करो, एक एक रोज लिखो नए ढंग से। तो वरदानों का जो मुरली के नीचे अभी आते हैं वरदान, अभी तक उस समय की बाबा की और दादी की प्रेरणा से आते हैं। क्योंकि जब एक साल तक हमने वरदान चलाए मुरली के नीचे, तो ब्राह्मण परिवार में एक बहुत उमंग आया और सबकी तरफ से फोन आने लगे, ये वरदान तो सबके लिए बहुत काम की चीज है, मनन भी चलता है, याद भी रहता है, और सबको उसके अनुसार चलने में खुशी होती है, तो इसको कंटिन्यू किया जाए। तो दादी कहती कंटिन्यू कैसे करेंगे, अब करो कैसे करोगे। तो फिर जितनी मुरलियां चली 69 से अभी तक की, उन सबको स्टडी की और स्टडी करके उसको वरदान के रूप में लिखना शुरू किया। ये जो पहली लाइन है भाव वाली, जो बाबा की वरदान की पहली लाइन है, वो मुझे बनानी पड़ती है, वो नहीं होती मुरली के अंदर। सफलता मुहूर्त भव, संपन्नता स्वरूप भव, जैसे बाबा भव के रूप में जो कहते हैं, वो भव के रूप में बाबा के शब्द नहीं है। लेकिन ये जो स्पष्टीकरण है पूरा 4-5 लाइन, वो बाबा के ही शब्द हैं, उसमें कोई एडिशन नहीं है, करेक्शन भी नहीं है, सेटिंग है सिर्फ। लेकिन पहली लाइन को सेट किया है हमने, और उसके आधार से फिर पूरी मुरलियों से 69 से जितनी मुरलियां अब तक चली हैं, सभी मुरलियों के वरदान मुरली में रिवाइज किए, और 6 साल तक एक भी वरदान रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद रिपीट करने पड़ रहे हैं अभी, बहुत डोज बाबा ने दिया, बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी पालना दी है, मुझे तो कभी कभी बड़ा नाज होता है, बहुत खुशी होती है, इतना खजाना ज्ञान का, इतनी गुणों की विशेष धारणाएं, बाबा ने कितना स्पष्ट, जितना भी आज आप पढ़ते हैं वरदान स्लोगन या अव्यक्त बाबा की मुरलियां या किसी टॉपिक पर बाबा की शिक्षाएं, वो अव्यक्त बाबा ने कितनी पालना दी है। किस टॉपिक को बाबा ने छोड़ा होगा, मैं समझता हूँ किसी टॉपिक को नहीं छोड़ा। आप पवित्रता के ऊपर मुरलियां निकालो तो ये किताब बन जाएगी, किताब बनाई उसके ऊपर पवित्रता की, देखा होगा। आप सहनशीलता पर निकालो, आप समाने की शक्ति पर निकालो, कोई भी विषय को ले लो, बाबा ने हर गुण हर शक्ति के ऊपर अव्यक्त रूप में बहुत गहराई से स्पष्टीकरण दिया है। इसलिए और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, मैं कहता हूं रोज बाबा की एक अव्यक्त वाणी पढ़ो, आपको बहुत अच्छी खुराक मिल जाएगी, बहुत अच्छा मनन चिंतन मिल जाएगा, बहुत अच्छा माल मिलेगा, ऐसे लगेगा कि बस बाबा ने ये आ सुनाया। कोई कहते ना मेरे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बहुत बातें आती बुद्धि में, उस संकल्पों को संकल्पों से ही परिवर्तन किया जा सकता है। व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन कहने के लिए समर्थ संकल्पों का खजाना है, लेकिन उस खजाने को हम लोग यूज नहीं कर पाते, इसलिए व्यर्थ संकल्प वार करते हैं। तो बाबा के इस खजाने को अच्छी तरह से मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए पहले स्टडी करने की जरूरत है। तो मैंने देखा कि बाबा ने इतना सब इतने वर्षों तक सुनाया है, अब बाबा का पाठ अब फिर से बदल रहा है, अब बाबा कोई शिक्षा नहीं दे रहा है इस सीजन में, तो केवल प्यार कर रहा है। सिर्फ नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको दृष्टि और कैसे बाबा आते हैं उसका अनुभव करा रहा है, शिक्षाएं देने का पाठ पूरा हो गया। 45 साल तक जो बाबा ने अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना की है, जो पढ़ाया है, अब उसका स्वरूप बनने का समय है। बाबा चाहता है कि अव्यक्त पालना का सभी मेरे बच्चे रिटर्न करें। क्या रिटर्न करेंगे हम? जो बाबा चाहता है वो मेरे स्वरूप से दिखाई दे। और इस बार डायरेक्ट बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने 18 जनवरी को एक शब्द रिपीट किया, फॉलो डबल फादर, दोनों बाप को फॉलो करो, बाप दादा को। ये है रिटर्न। ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में जो कुछ किया है अव्यक्त रूप में वो सब कुछ बताया है। आप स्टडी करेंगे, मैं मुरलियों की स्टडी करता हूं, 2-3 दिन से मेरा यही एक अभ्यास फिर से चल रहा है। अव्यक्त रूप में बाबा ने फॉलो फादर किस बात में करना सबको सुनाया है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा ऐसे करते थे। मान लो ब्रह्मा बाबा के आगे कोई बच्चा आके उनकी इंसल्ट करता था, छोटे बच्चे भी कुछ बोल देते थे, कोई कहना नहीं मानता था, कोई बाबा को पहचान नहीं सकता था तो बाबा के सामने सामने गलानी भी करता था, अपशब्द भी बोल देता, बाबा कैसे उसको क्षमा करते थे, कैसे उसको एकदम डोंट केयर करके एकदम शुभ भावना उसके प्रति रखते थे, कभी वैर नहीं, कभी विरोध नहीं, बच्चा नादान है, बच्चा अनजान है, बिल्कुल अलग प्रकार की पालना देने का तरीका। आज दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि अगर कोई मुझे गाली दे तो मैं चुप होकर के सुन लूं, कुछ न कुछ उसके रिटर्न कर देंगे, कुछ न कुछ बोल देंगे। लेकिन बाबा ने उस बच्चे को प्यार दिया उसके रिटर्न में, उसको सम्मान दिया। तो बाबा हम बच्चों को सिखाता है, बच्चे की कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी, कोई भी अवगुण ब्रह्मा बाबा ने चित्त पर नहीं रखा, उसको रिस्पेक्ट दे करके, सम्मान दे करके उसकी कमियों को भुलाने का प्रयास किया। और यहां तक भी अगर आप देखेंगे उसकी विशेषताओं को वर्णन किया। मैंने अव्यक्त बाबा को देखा, व्यक्ति सामने जो आता है मैं जानता हूं ये ऐसा करके आया है, मुझे भी पता है, बाबा को भी पता है, दादियों को भी पता है कि इसने गलती की है, ये ऐसा ऐसा करके आया है। बाबा के सामने आता है तो बाबा उसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। हमको लगता है क्या बाबा कर रहा है, ये इसने ऐसा किया, इसने डिससर्विस किया, यहां ऐसी डिससर्विस हो गई, फिर भी बाबा उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। तो बाबा कहता है शिक्षा देने का बाबा का स्वरूप है कि बाबा उसको विशेष बनाना चाहता है, और अगर उस विशेषता के आधार से उस आत्मा ने परिवर्तन कर लिया तो उसकी कमी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मुरली के अंदर आप देखेंगे कभी कभी किसी मुरली को आप ध्यान से सुनो, पूरी मुरली बच्चों की विशेषताओं पर होती है, लेकिन शिक्षा उसके पीछे एक दो शब्द की होती है। शिक्षा जरूर होगी लेकिन पूरी मुरली के अंदर बाबा बच्चों की विशेषताएं वर्णन कर रहा है। तो ऐसा बता करके, बहुत ऊंची स्टेज पर स्थित करा करके फिर छोटी सी बात कहता है, ये बच्चे नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये संस्कार ठीक नहीं है। तो वो करने वाले को हिम्मत आ जाती है, जैसे बीज डाला जाए लेकिन अगर धरती ठीक ना हो तो बीज बेकार हो जाएगा। धरनी को पहले तैयार करते हैं और जब धरनी तैयार हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, तब उसमें बीज डालते हैं तो उसमें से अच्छा अंकुर निकलता, अच्छा पौधा निकलता, अच्छा फल देता है। बाबा ने इस विधि को साकार में प्रैक्टिकल किया, दादी को भी मैंने यही देखा, फुल कदम कदम पर दादी ने बाबा को फॉलो किया। विशेषताओं का वर्णन करना, विशेषताओं के आधार से उसको सेवा में लगाना, और अगर वो सेवा में लग गया तो उसकी कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अगर उसको कमियों पर ध्यान खिंचवा दिया तो हो सकता है वो दिल शिकस्त हो जाए, निराश हो जाए और वो अपने सेवाओं को छोड़ करके ज्ञान को भी छोड़ दे। इसलिए बाबा ने हर बच्चे की विशेषता देखी, हरेक को सम्मान दिया, हरेक को रिस्पेक्ट दिया। इसलिए आज सबके मुख से निकलता है मेरा बाबा, छोटा बड़ा। बाबा कहता है चाहे वो प्यादा है, चाहे घोड़े सवार है, चाहे महारथी, हर एक क्या कहता है, क्या कहता है हर एक, बोलो मेरा बाबा, मेरा बाबा। हम दादी को भी कहते मेरी दादी, मेरी दादी, कोई नहीं कहता उसकी दादी, उसकी दादी। तो बाबा ने, दादियों ने हम सबको, जितने जैसे बच्चे थे सबको एक बना करके, उनकी विशेषताओं को देख करके, उनको सम्मान दे करके आगे बढ़ाया और अपनेपन की फीलिंग दी। परिवर्तन करने का एक बहुत सुंदर तरीका स्नेह से थी। अथॉरिटी, ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी से कुछ भी कह सकता था, बहुत बड़ी अथॉरिटी थी। अथॉरिटी यूज नहीं की, नम्र चित होकर के, निर्माण चित होकर के। बोल में अथॉरिटी है लेकिन बच्चों को सम्मान देने में बहुत नम्र चित है। तो बैलेंस से बाबा ने इस यज्ञ को चलाया, दादियों ने चलाया, और चलाते चलाते आज इतना बड़ा विस्तार हुआ है, कहां तो एक छोटा सा घर। जब बाबा व्यक्त हुए तो पूरे भारत के अंदर 100 सेंटर मुश्किल से थे, आज 135 देशों में इतने बड़े देश विदेश के सभी धर्म के बच्चे, लाखों का परिवार, उसकी पालना अव्यक्त रूप में बाबा कर रहा है। दादियां भी उनको साथ दे रही हैं। हम सबको भी बाबा कहता है बच्चे तुमने जो पालना ली है इसका अब रिटर्न करो। और रिटर्न यही है जैसे बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जैसे बाबा हर परिस्थिति में अचल, अडोल, एक रस, जैसे बाबा निमित्त निर्माण बन करके रहा है, ऐसे मेरे बच्चे बन जाओ। अभी सेवा का स्वरूप बदल रहा है, इसलिए बाबा चाहता है कि वाणी की सेवा के साथ साथ अब बच्चे अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करें। चेहरे से, चलन से, हमारे व्यवहार से लगे कि इनको भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है। अगर हम सब अपनी धारणाओं पर ध्यान देंगे, हमारी रूहानियत बढ़ती जाएगी, दिव्यता बढ़ती जाएगी, अलौकिकता बढ़ती जाएगी, तो अपने आप लोगों को आकर्षण होगा। उनको पता चलेगा कि ये भगवान के स्टूडेंट हैं। तो अब बाबा की पालना का ये रिटर्न हमको देना है। तो इस समय के अनुसार अभी फास्ट गति चल रही है, अंतिम समय के समीप हम पहुंच रहे हैं। अब बाबा कहता है मेरे बच्चे समान बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी एक एक कर्म इंद्रिय को जीता, जो गायन है योगी शीतल काया वाले, ब्रह्मा बाबा ऐसा योगी से तपस्वी बन करके रहा। त्याग नंबर 1, सबसे बड़ा त्याग देहाभिमान का किया। फिर साधन सुविधाओं को भी देखते भी यूज नहीं किया, ठीक है बच्चों के लिए है, अपने प्रति नहीं लगाया, सेवा के लिए है, विश्व के लिए है, त्याग वृत्ति रही। मालूम होगा जब पहला पहला भवन बना पांडव भवन में, जिसको हवाई महल कहते हैं, बाबा पुराने मकान में रहता था और सामने बनाया हवाई महल। जब हवाई महल बन गया तो सब बच्चों ने कहा बाबा अभी पुराना मकान तो बहुत टूट फूट गया है, छप्पर से ऊपर से पानी गिरता है, अभी आप नए मकान में रहो। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? शिव बाबा तो इस पुरानी जुत्ती में आता है, वो पुराने रथ में आता है, बाबा भी पुराने घर में रहेगा। नया घर तो बच्चों के लिए है। कभी स्वीकार नहीं किया कोई मान शान महिमा फूल भी स्वीकार नहीं किए। तो एक भाई हंसी में इस बार कह रहा था, जब तक साकार में बाबा था फूल भी स्वीकार नहीं किया, और अब बाबा की समाधि के ऊपर कितने फूल चढ़ रहे हैं, बाबा के कमरे में बाबा की फोटो को कितना फूलों से सजा रहे हैं। तो बाबा ने इतना त्याग किया तो इसी जन्म में देख लो कितना भाग्य है, कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हम बच्चों को बाबा कहता, बच्चे जो साधन है जो सुविधाएं मिली हैं जो बाबा ने दिया है सेवा में यूज करो, सेवा में लगा दो, अपनत्व तो नहीं रखना। ये मेरा है, मेरा समझेंगे तो फेरा पड़ जाएगा, फंस जाओगे, दुखी होते रहोगे। इसलिए यूज करो लेकिन फंसना नहीं। तो त्याग वृत्ति तपस्या में नंबर वन। हर सेकंड देखेंगे बाबा को एकांत प्रिय है, सब समाचार सुन रहा है, एक मिनट में शरीरी हो जाता। तो बच्चों को भी कहता है, बच्चे तपस्या में नंबर वन बनो, बीच बीच में देह से न्यारे बनने का अभ्यास करो। और सेवाएं तो बाबा को जो करानी हो कराएगा, करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। तो निमित्त समझ करके बाबा को दे दो शरीर, ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, ये सब तेरा है बाबा, आप इसको यूज करो। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे अपने को समर्पित किया, ऐसे सबका सामना किया, सब कुछ सहन किया, त्यागी तपस्वी सेवाधारी बनकर रहा। अभी बच्चों को रिटर्न करना है, नहीं रिटर्न चाहिए ना बाबा को, और क्या करना है बाबा को, सेवा तो लेनी नहीं स्थूल में। तो बाबा अब अपने बच्चों से यही रिटर्न चाहता है। कर रहे हैं ना सभी, हम सबको करना है, आपको भी करना है तो हमको भी करना है। तो यही लक्ष्य रख करके, बाबा आपने इतना मुझे दिया है, इतनी अच्छी जीवन बनाई है, कहाँ से निकाला है, अभी हम भी यही सेवा करेंगे। जो आपने मेरे साथ किया हम आप सबके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो बाबा की अव्यक्त पालना का ही रिटर्न है, ठीक है। डबल विदेशी समझ रहे हैं आप लोग, हाथ तो करो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं जो हाथ उठाओ, देखें ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे उठाते, ठंडी में ऐसे नहीं उठाते। ओके, थैंक यू, ओम शांति।